अतीत की यादों में खोए कब रात बीती और सवेरा हो गया, दोनों को इसका एहसास ही नहीं हुआ। जब सूरज की किरणों ने रात के अंधकार को दूर करते हुए चारों ओर अपना प्रकाश फैलाया और उन सुनहरी किरणों ने उनके चेहरे को स्पर्श किया, तो उन्हें आभास हुआ जैसे उनके अतीत का अंधकार नई सुबह के उजाले में कहीं खो गया है और एक नया दिन उनके इंतजार में बाहें फैलाए खड़ा है। राधिका ने अपनी भीगी आंखों की नमी को अपनी हथेलियों से साफ किया, एल्बम लेकर बालकनी में आई और एक नज़र अजय को देखने के बाद उस एल्बम में आग लगा दी। जब तक पूरा एल्बम जलकर राख नहीं हो गया, राधिका भावहीन सी उसे घूरती रही। उस एल्बम के साथ आज उसने अतीत की उन कड़वी दर्द भरी यादों को भी जलाकर भस्म कर दिया था जो उसके दर्द की वजह थे। दूसरे तरफ माधव ने ठंडी आह भरी और दीवार पर लगी उस फोटो फ्रेम को उठाकर उसे डस्टबिन में डाल दिया। एक वो दिन था जब सुमन ने उसे अपनी जिंदगी से निकाला था और एक आज का दिन था जब माधव ने उसे और उससे जुड़ी यादों को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर कर दिया था, उस टूटे रिश्ते की एक आखिरी निशानी को भी खुद से दूर कर दिया था और साथ ही खुद को उस वक्त से आज़ाद कर लिया था जहां सालों से कैद था वो। राधिका, ये नाम मेरे दिल पर छपा है और आपका चेहरा मेरे मन में बसा है। आप वो हैं जिसे मैंने कभी शिद्दत से अपनी जिंदगी में शामिल करने की चाहत की थी, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब आपसे रिश्ता टूटा और मेरी सुमन से शादी हुई तो मुझे लगा था जैसे मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, पर अब जब आप एक बार फिर मेरी जिंदगी में लौट आई हैं तो इस बार मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। राधिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा आज फिर माधव की आंखों के सामने उभर आया था। वक्त बदले थे पर जज्बात आज भी वही थे और राधिका से जुड़े एहसास तो वक्त के साथ और गहरे हो गए थे। दूसरे तरफ राधिका का मन भी माधव के ख्यालों में उलझा था, बस उसके जज्बात जरा अलग थे। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, शायद उम्र भर का साथ अब भी ना हो हमारा, पर किस्मत ने जो पल आपके साथ दिए हैं उन्हें खुलकर जीने को दिल चाहता है। अपनी सच्चाई जानते हुए अपनी आंखों में अब फिर से वही ख्वाब सजाने की भूल तो शायद अब कभी ना करूं मैं, पर आपकी दोस्ती में कुछ पल सुकून के बिताने को जी चाहता है। शायद अनु ठीक ही कह रही थी, मैं भी इंसान हूं, हक है मुझे भी खुश रहने का। सालों से बस जिम्मेदारियों के पीछे भाग रही हूं, खुद को ही भुला दिया है, पर अब जब मौका मिला है तो एक बार फिर खुद से मुलाकात करना चाहती हूं, दिल से मुस्कुराना चाहती हूं, भले ही कुछ पल ही सही पर खुश रहना चाहती हूं, आपके साथ कुछ हसीन यादें बनाना चाहती हूं। कभी चाहा था आपको, इतना हक तो मैं भी रखती हूं आप पर। इनकी किस्मत अब इन्हें किस रास्ते पर ले जाने वाली थी ये तो वक्त ही बताने वाला था, पर इतना तो तय था कि एक दूसरे के लिए एहसास दोनों के दिल में थे, बस जिंदगी की आजमाइशों ने उनके दिलों में फासला बढ़ा दिया था। राधिका और माधव की दोस्ती को कुछ महीने का वक्त बीत गया था जिसमें कई बार उनकी बातें हुई थीं और दो तीन बार मुलाकातें भी हुई थीं। उनकी दोस्ती का रंग उन पर गहरा चढ़ रहा था। वक्त के साथ उनके बीच की झिझक अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी और एक खूबसूरत सा रिश्ता बन गया था उनके बीच। वो लम्हे जब वो एक दूसरे के साथ होते थे, दोनों ही उन लम्हों को खुलकर जीते थे, अपने दिल की बातें बेझिझक एक दूसरे से करते, सबसे बड़ी बात जिंदगी की मुश्किलों और जिम्मेदारियों को भुलाकर दिल से मुस्कुराते थे और अपनी परेशानियां भी एक दूसरे से शेयर करते थे। उनके इस महकते रिश्ते की खुशबू शैतान अप्पू और शिखा की नाक तक भी पहुंच चुकी थी, पर अभी दोनों ही खामोश थे जबकि आपस में दोनों की खूब बातें और प्लानिंग होती थी। रात का वक्त था, राधिका को माधव के फोन का इंतजार था, ज्यादातर इसी वक्त दोनों की बातें हुआ करती थीं। आज भी फोन बजा और राधिका के लबों पर सौम्य सी मुस्कान बिखर गई, चेहरा यूं चमक उठा जैसे एलईडी बल्ब जल उठा था। इस वक्त वो बिल्कुल उस टीनेज लड़की जैसी लग रही थी जैसे शिद्दत से अपने प्यार का इंतजार था, अपने इस रूप से वो खुद अनजान थी। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक ना ठहर सकी, जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर झलकते नाम पर पड़ी उसका चेहरा मुरझा गया और मुस्कुराते लब भी सिमट गए। कुछ सेकंड लगे उसे खुद को संभालने में। हेलो, कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल झक्कास हूँ, तू बता, दूसरे तरफ से अंजलि की खनकती हुई आवाज़ आई। उसका सवाल सुनकर राधिका भी मुस्कुरा दी। मैं भी ठीक हूँ, तेरे ससुराल में दिन कैसे कट रहे हैं? बस यार, दिन भर सासू माँ की चाकरी करो और रात में उनके बेटे की सेवा, अच्छी खासी ड्यूटी लगी हुई है, ना दिन को चैन ना रात को आराम। जिस अंदाज में अंजलि ने ये बात कही, राधिका की हंसी छूट गई और उधर अंजलि भड़क उठी। कमीनी, कुछ शर्म कर ले, यहाँ तेरी दोस्त अपना दुखड़ा सुना रही है और तू है कि सहानुभूति जताने की जगह बेशर्मों जैसे दांत फाड़कर हंसने में लगी हुई है, थोड़ी दोस्ती की लाज ही रख ले। अंजलि के हाथों जलील होने के बाद राधिका को हंसी तो और जोर की आई, पर उसने किसी तरह अपने लबों को आपस में भींजते हुए खुद को हंसने से रोक लिया। उधर अंजलि का गुस्सा अब और बढ़ गया। हंस ले कमीनी, होंठ दबाकर हंसी क्या रोक रही है, रख देती हूँ मैं फोन, तो जी भरकर हंस ले। अरे नहीं नहीं फोन मत रख, अब नहीं हंस रही सच्ची। राधिका ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाई, वहीं अंजलि ने खींचते हुए मुंह बना लिया। वैसे अंजू अब ना तू आदत ही डाल ले, अब शादी का लड्डू खाने का इतना शौक था तुझे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने ही पड़ेंगे, और ये सिलसिला अब सारी जिंदगी ऐसे ही चलने वाला है, तो आदत डाल ले, फायदे में रहेगी कसम से। राधिका के लबों पर चंचल मुस्कान थिरक गई, जानबूझकर छेड़ा था उसने उसे और अंजलि चिढ़ भी गई थी। राधु की बच्ची तू मेरे सामने आ, आज जान ले लेनी है मैंने तेरी, बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे मुझे टीज करने का, तेरा सारा शौक निकाल दूंगी, बड़े मजे ले रही है ना मेरी हालत के, तेरा नंबर आने दे बेटा फिर देखियो कैसे गिन गिन कर हिसाब बराबर करती हूँ तुझसे। मेरा नंबर तो निकल गया, अब तेरी बारी है, राधिका ने कह तो दिया पर अजीब सी उदासी उसके चेहरे पर छा गई। अंजलि भी पल भर को चुप हो गई, गलती से उसने राधिका की दुखती रख पर हाथ रखकर उसके उन जख्मों को छेड़ दिया था जो आज भी नहीं भरे थे। खींचते हुए अंजलि ने अपने होंठ पर हल्के से थप्पड़ लगाते हुए खुद को कोसा, फिर बात बदलते हुए बोली, यार रिद्धु तेरे और माधव का क्या सीन चल रहा है, आइडिया काम किया था। राधिका एकदम से अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आई थी और माधव का ख्याल मन में आते ही चेहरे पर छाए उदासी के बादल भी छंट गए थे। कुछ भी नहीं और सीन चल रहा है से तेरा क्या मतलब है, अंत में राधिका ने भौं उठाते हुए सवाल किया और चेहरे पर सवालिया भाव उभर आए। मतलब मुझे कार्तिक से पता चला कि आजकल खूब बातें और मुलाकातें हो रही हैं तुम्हारी माधव से, बस इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या सीन है, कहीं पहली मोहब्बत फिर से परवान तो नहीं चढ़ने लगी। कुछ भी बकवास मत कर अंजू, हम बस दोस्त हैं, राधिका बुरी तरह हड़बड़ा गई, पर अब तो मौका अंजलि के हाथ लग गया था, इतनी आसानी से छोड़ देती तो दोस्त कैसे रहती, तो लगी उसकी टांग खींचने। दोस्ती हर रिश्ते की नींव होती है राधु, वैसे तुम्हारा केस जरा उल्टा नहीं है, पहले रिश्ता तोड़ा फिर हुई मोहब्बत और अब दोस्ती, नेक्स्ट लेवल क्या होगा इस रिश्ते का। अंजलि ने शरारत से आंखें मटकाई जबकि राधिका उसकी बात सुनकर व्याकुल हो गई, जिसे उसने अपने गुस्से के पीछे छुपा लिया। कुछ भी नहीं और तू अपना दिमाग चलाना बंद कर, वैसे ही भगवान ने तुझे दिमाग देने में इतनी कंजूसी की है, जो भी तरस खाकर थोड़ा बहुत दिया है वो भी इन बकवास बातों में खर्च कर देगी, तो बदमाश लड़की के पीछे सर फोड़ते फोड़ते बेचारे जीजू पागल हो जाएंगे।
मेरा क्या होगा वो मैं देख लूंगी और तेरे जीजू को भी संभाल लूंगी, तू अपनी चिंता कर, क्योंकि फिलहाल तो मुझे बेवकूफ तू ज्यादा लग रही है और शायद मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है या शायद खुद को पागल बना रही है। कहना क्या चाहती है तू, राधिका ने बेचैनी से पहलू बदला, वहीं अंजलि के चेहरे पर संजीदा भाव उभर आए। चाहती है ना तू आज भी माधव को, पर अपने ही एहसासों को दोस्ती के पीछे छुपाकर खुद से ही भाग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, राधिका ने घबराहट में अपने पैर के अंगूठे से फर्श को कुरेदना शुरू कर दिया, पर अंजलि अब काफी सीरियस हो गई थी। रहने दे राधु, तेरा झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा, मुझे तो समझ नहीं आता कि जब तू माधव को चाहती है वो आज भी तुमसे प्यार करते हैं, तुम दोनों ही सिंगल हो और अब तो इतनी गहरी दोस्ती भी हो चुकी है तुम्हारी, फिर तू क्यों अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तेरे जगह मैं होती तो अब तक माधव को प्रपोज भी कर चुकी होती और इससे पहले कि इस बार कोई और उन्हें मुझसे छीनता उन पर अपने नाम का स्टैम्प भी लगा देती। अंजू यार कैसी बात कर रही है तू, वही कह रही हूँ जो सच है और ये तू भी जानती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, इस वक्त तुम दोनों अकेले हो तो साथ मिलकर उस अकेलेपन को दूर करने और जिंदगी के सफर के दोस्त की जगह हम सफर बनकर तय करने में कोई बुराई भी नहीं, वो भी तब जब तुम दोनों ही आज भी एक दूसरे को चाहते हो। अंजू ये अब मुमकिन नहीं है, तू इतना मत सोच, मेरे और माधव जी के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता और पहले जो था वो भी अतीत में था, अब हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अच्छा चल मान लेती हूँ, पर तू मुझे वजह तो बता कि तेरा और माधव का साथ होना क्यों मुमकिन नहीं है, तुझे पता नहीं है क्या पहले हमने रिश्ता तोड़ा था क्योंकि उनके पास जमीन जायदाद पैसा नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था, और अब जब उन्होंने उस मुश्किल दौर को पार कर लिया है, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, तो फिर से उनके वहां रिश्ता ले जाएं, कितना एम्बैरेसिंग लगेगा ये, मैं स्वार्थी और लालची बन जाऊंगी, क्या सोचेंगे वो कि जब उन्हें मेरे साथ की जरूरत थी तब मैंने पैसा और ऐशो आराम की जिंदगी का चुनाव किया, और अब जब उनके पास सब है और वो मुझे बेहतर जिंदगी दे सकते हैं तो मैं उनके पास चली आई, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। राधिका के मन को व्याकुलता ने घेर लिया, चेहरे पर उलझन के भाव उभरे और माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अंजलि ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से कहा, मुझे तो नहीं लगता कि माधव ऐसा कुछ सोचेंगे, तुझे ही ज्यादा सोचने की बीमारी है, और फिर तूने कुछ नहीं किया था, वो सब अंकल आंटी का फैसला था, तो तू इन सब के बीच में कहां से आ गई। पर मैंने उन्हें रोका तो नहीं था। कैसे रोकती तू जब तू असल वजह जानती ही नहीं थी। फिर भी यार मुझसे ये नहीं होगा, मैं उनकी नज़रों में खुद को गिरते नहीं देख सकती, हम दोस्त ही ठीक हैं और बहुत खुश हैं, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं बेवजह अब हमारा रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती, वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे ऊपर मेरी बहन और पापा की जिम्मेदारियां हैं जो मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती।
और तब क्या होगा जब अप्पू की शादी हो जाएगी और अंकल तुझे छोड़कर चले जाएंगे, तब तू इतनी बड़ी दुनिया में अकेले कैसे रहेगी? अंजलि ने उसका सामना जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत से करवाया था। राधिका को पहले तो कोई जवाब ही नहीं सूझा, फिर नजरें बेचैनी से यहां वहां घुमाने लगी। रह लूंगी यार, दुनिया में और भी लोग अकेले जिंदगी गुजारते हैं, मैं भी काट लूंगी, जिएगी कब जिंदगी? अंजलि का ये सवाल राधिका को निशब्द कर गया और अंत में उसने बहाना बनाकर फोन ही काट दिया। पर दिल अजीब सा हो गया था, अब भी वो अंजलि की बातों के बारे में ही सोच रही थी। एक बार फिर फोन बजा तो राधिका को लगा कि फिर अंजलि ने फोन किया होगा। उसने फोन काटने के लिए जैसे ही स्क्रीन पर नजर डाली, वहां माधव का नाम चमकते देखकर उसके हाथ हवा में ही रह गए। दिल एक बार फिर बेचैन हो गया। उसने फोन साइलेंट किया और बिस्तर पर लेट गई, पर सुकून तो उसे यहां भी किसी करवट नहीं था। दूसरी तरफ इतने वक्त में ये पहली बार हुआ था कि राधिका ने उसका फोन नहीं उठाया था, इसलिए माधव भी बेचैन हो गया। टू बी कंटिन्यूड, अपनी बहुमूल्य समीक्षा देते जाएं।